वहां खड़े सभी मेहमान आपस में बातें करने लगे थे। वहां हुए नाटकीय घटनाक्रम के बाद सब समझ गए थे कि दूल्हा नहीं आने वाला और शायद वो शादी नहीं करना चाहता था। उसकी माँ जबरदस्ती शादी करवाना चाह रही थी और लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। उदय इप्सिता की हालत देखकर अपने माता पिता और मासा की ओर देखते हुए गुस्से से भर गया। उसने अपने माता पिता के सामने खड़े होकर तेज आवाज में कहा, बस यही चाहते थे ना आप लोग कि आपकी बेटी आप लोगों की इज्जत के लिए आपकी सारी बातें माने। आप लोगों ने हर चीज के लिए उससे झूठ बोला, हर पल आप लोगों ने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और देखिए आज उसकी क्या हालत हो गई है। क्या लगता है आप लोगों को कि हमें आप लोगों की डील के बारे में नहीं पता था? किस तरह आप लोगों ने ऋषि का सौदा किया इस शादी को लेकर? अरे कहते हैं कलयुग में बच्चे माँ बाप के लिए बुरे होते हैं, लेकिन यहाँ तो माँ बाप ने ही अपने बच्चों का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा। और हम भी कहाँ आप लोगों से कोई उम्मीद रख रहे थे। हमने इतना ही सोचा था कि हमारे साथ नहीं तो कम से कम ऋषि के साथ तो अच्छे से व्यवहार करेंगे और उसकी खुशियों के बारे में सोचेंगे, लेकिन नहीं, हम गलत थे। उदय अपने मन के हर शब्द को उन सबके सामने बोल रहा था। उदय के पिता उसे गुस्से से घूर रहे थे। उसने उनकी ओर देखकर कहा, पापा अब हमें घूर कर आप क्या कर लेंगे? आप तो बस अपनी डील करिए और हर तरफ अपना और अपनी कंपनी का फायदा देखिए। हमें शुरू से पता था कि इस शादी के बदले राजवंशी कंपनी के शेयर में 15% हिस्सा आप लोगों को मिलने वाला था और आपकी कंपनी को उससे बहुत फायदा होता। इतना बोलकर उदय इप्सिता के कमरे की ओर जा ही रहा था कि उसने मासा और अर्पिता की ओर देखते हुए कहा, आप लोगों ने हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद करके अच्छा नहीं किया। हम आप लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे, ना आप सबको और ना ही अभिमन्यु को। अगर अभिमन्यु को ही शादी नहीं करनी थी तो फिर उसने इतना अच्छा होने का दिखावा क्यों किया? वो पहले ही इस शादी के लिए मना कर सकता था। क्या उसे भी हमारी बहन की खुशियां जलाकर राख करनी थी? इस समय अर्पिता और मासा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मासा इप्सिता के उन कंगनों की ओर देख रही थी जिन्हें इप्सिता ने कुछ देर पहले गुस्से में उतारकर उनके हाथों में रख दिए थे। उदय की बात सुनकर मासा ने तेज आवाज में कहा, अभिमन्यु को ढूंढिए, कहाँ है वो? कहीं उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं है? उदय वहां से जा ही रहा था कि अर्पिता ने कहा, एक मिनट उदयवीर, रुकिए और हमारी बात सुनिए। आप बिना पूरा सच जाने किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते और हम अपने भाई को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर इतना बड़ा कदम उठाया है तो कोई बहुत बड़ी वजह होगी। आप कृपया अपने गुस्से को शांत रखिए और भाई साहब के खिलाफ हम एक भी शब्द नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम जानते हैं। सही कह रही हैं आप, बहुत अच्छे इंसान हैं आपके भाई। दूसरों की खुशियाँ छीनना और उन्हें दुख पहुँचाना उन्हें बहुत अच्छी तरह आता है। उदय ने अर्पिता और मासा को ताना मारते हुए ये बात कही और वो चुपचाप इप्सिता के कमरे की ओर जाने लगा। मासा इप्सिता की ज्वेलरी की ओर देख रही थी। तभी उन्होंने मन ही मन कहा, अभिमन्यु आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? इतने सारे लोगों के सामने हमारी इज्जत को इस तरह क्यों उछाला? मासा के दिमाग में ये बात आई और वो अभिमन्यु के बारे में सोचते हुए बोली, अभिमन्यु आपने ऐसा क्यों किया? मासा अभिमन्यु के बारे में सोचते हुए वहीं पास में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी माँ की हालत देखकर अर्पिता भागती हुई उनके पास आ गई। दूसरी ओर जयराज और अभिमन्यु के चाचा चाची भी आ गए, उनकी फिक्र करने का दिखावा करते हुए। लेकिन अर्पिता और मासा के होठों पर सिर्फ अभिमन्यु का नाम था। वे शायद उसके वापस आने की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन वो वापस नहीं आया और धीरे धीरे वहाँ के सारे लोग और मेहमान भी कम हो गए। 6 महीने बाद मुंबई का एक 3 BHK फ्लैट जो अंदर से काफी साधारण और साफ सुथरा बना हुआ था। इंटीरियर से लेकर पूरा फ्लैट बिल्कुल आधुनिक तरीके का था। इस फ्लैट के साइड कॉर्नर में बना हुआ डाइनिंग एरिया जिसमें 6 कुर्सियों वाला एक डाइनिंग टेबल था, जिसकी एक कुर्सी पर इप्सिता आराम से बैठकर अपनी मॉर्निंग कॉफी पी रही थी और मोबाइल फोन में आए नोटिफिकेशंस को चेक कर रही थी। तभी उदय वहां आया और डाइनिंग टेबल की हेड चेयर पर बैठते हुए उसने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग ऋषि। इप्सिता ने उदय की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग भाई। उदय ने चेयर पर बैठते हुए कहा, और ऋषि कैसा चल रहा है आपका काम? इप्सिता ने मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ पहले जैसा ही है, बिल्कुल नॉर्मल और ठीक ही जा रहा है। इप्सिता बोल ही रही थी कि नंदिनी अपने हाथ में एक मैगजीन लेकर बाहर निकली। उसने उस मैगजीन को टेबल पर रखते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस ऋषि, पिछले 2 महीनों की तरह इस महीने भी तुम ही यूथ मैगजीन की फ्रंट कवर पर हो। देखो ये वाली पिक मुझे भी सबसे बेस्ट लगी थी, देखो यही पिक फ्रंट कवर पर छपी है। मैगजीन के फ्रंट कवर पर प्रिंट हुई इप्सिता की उस बेबी पिंक कलर की फ्लेयर वाली ड्रेस वाली फोटो को देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ भाभी ये पिक सच में काफी अच्छी क्लिक की थी ध्रुव ने। उदय उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। तभी उसने इप्सिता के हाथ से मैगजीन लेते हुए कहा, सच में तुम्हारे ऊपर ये बेबी पिंक कलर कुछ ज्यादा ही सूट करता है, सच में बड़ी प्यारी लग रही हो। इप्सिता ने नंदिनी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कैसे प्यारी न लगती भाई, इस ड्रेस में मेरा मेकअप मेरी भाभी ने किया था। नंदिनी इप्सिता को घूरते हुए बोली, इशू मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, तुम प्लीज मुझे भाभी मत कहा करो, वैसे भी मुझे भाभी सुनकर बहुत अजीब लगता है, तुम प्लीज मेरा नाम लिया करो। नंदिनी की इस बात पर इप्सिता उसे छेड़ते हुए बोली, क्यों आप दोनों की शादी को 5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, क्या अभी भी आपकी आदत नहीं पड़ी भाभी सुनने की। भाभी, इतना बोलकर इप्सिता हंसने लगी और उदय की ओर देखा तो वो भी अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी छिपाने की कोशिश कर रहा था। नंदिनी ने इप्सिता को घूरते हुए देखकर कहा, अच्छा इशू तो बार बार मुझे चिढ़ाने के लिए भाभी भाभी बोल रही है ना, मान जा सुबह सुबह क्यों तुम मुझसे झगड़ा करने पर तुली हुई है। उदय नंदिनी की ये बात सुनकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, क्यों नंदिनी अब आप उसकी भाभी हैं तो वो आपको भाभी नहीं बुलाएगी तो क्या बुलाएगी, वैसे भी ऐशी अब भाभी ही बुलाया करो नंदिनी को, हमें तो ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। नंदिनी ने उदय का हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप ये, उदय हटिए छोड़िए मुझे। इतना बोलकर नंदिनी उदय का हाथ अपनी कमर से हटाने लगी। तभी किचन से एक अधेड़ उम्र की औरत निकल कर आई। उसने लॉन्ग कुर्ते के नीचे ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी, उसके बाल खुले थे, उसके एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में 2 ब्लैक कलर के कंगन थे जो दिखने में बड़े ही स्टाइलिश लग रहे थे। वो किचन से बाहर निकल कर आई, उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें एक बाउल रखा हुआ था। उसने वो बाउल सीधे टेबल पर रखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बच्चों, और नंदिनी क्यों भला इशू तुम्हें नाम लेकर पुकारे, अब तो रिश्ते में भी तुम उससे बड़ी हो गई हो, तब तो तुम्हें इज्जत देने के लिए वो तुम्हें भाभी तो बुलाएगी ही ना। इप्सिता उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आंटी एकदम सही कहा आपने, इसीलिए इसे प्रॉब्लम हो रही है, अब ये रिश्ते में मुझसे बड़ी हो गई है तो मैं तो इसे भाभी बुलाऊंगी ही ना, ये है कि बार बार मुझे भाभी बोलने से मना कर रही है, वैसे भी मैं तो उदय भाई की तरफ से ही ये रिश्ता निभाऊंगी, फिर इसे बुरा लगता है तो लगे। इतना बोलकर इप्सिता हंसने लगी। उसने उदय की ओर देखा, उदय नंदिनी और इप्सिता की बातें सुनकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था।
तभी नंदिनी इप्सिता के पास आई, उसने गुस्से से अपना मुंह फुलाते हुए कहा, क्या माँ मैं आपकी बेटी हूँ या फिर ये दोनों, आप मेरा साइड न लेकर इन दोनों भाई बहनों का साइड ले रही हैं, और ये दोनों तो वैसे भी एक हो जाते हैं हमेशा। नंदिनी की माँ ने उदय के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, अब तो तुम तीनों ही मेरे बच्चे हो, वैसे भी तुम तीनों को इस तरह आपस में बात करते और लड़ते झगड़ते देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नंदिनी अपनी माँ की बात सुनकर उदय और इप्सिता के बीच वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, मैं तो इन दोनों भाई बहनों के बीच में जैसे सैंडविच बन गई हूँ, कभी ये छेड़ते हैं तो कभी ये इशू। इतना बोलकर वो ब्रेकफास्ट करने लगी। उसे इस तरह चिढ़ता देखकर इप्सिता और उदय एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। नंदिनी को इस तरह मुंह बनाते देखकर इप्सिता उठी और वो नंदिनी को गले लगाते हुए बोली, अरे बाबा अब तुम ऐसे मुंह बनाकर बैठी रहोगी या ब्रेकफास्ट भी करोगी, भूल गई हो क्या आज हमें थोड़ा जल्दी निकलना है। नंदिनी इप्सिता की बात सुनकर बोली, हाँ जल्दी तो चलना था लेकिन तुम ही हो जो हर बार लेट करती हो, वैसे भी मैं तो रेडी हूँ। इप्सिता ने टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ करते हुए कहा, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, बस तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट करो फिर हम साथ में निकलते हैं। तभी नंदिनी की माँ की नज़र सामने रखी मैगजीन के कवर पर गई। उन्होंने इप्सिता की ओर देखते हुए कहा, अरे वाह इस महीने की मैगजीन कवर पर भी तुम्हारी ही फोटो आई है। इप्सिता बस मुस्कुराई। तभी उदय ने कहा, हाँ माँ इशू ने तो हैट्रिक मारी है, लगातार 3 महीने तक किसी मॉडल की पिक एक ही कवर पर आना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। जैसे ही उदय ने ये बात कही नंदिनी की माँ खुश होते हुए बोली, हाँ ये तो सच में बड़ी ही खुशी की बात है, और मैं तो चाहूंगी मेरे तीनों बच्चे ऐसे ही तरक्की करें और ज्यादा। वैसे मैं भी तुम लोगों को एक खुशखबरी देती हूँ, मेरे कुकिंग चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। जैसे ही उदय और नंदिनी ने ये बात सुनी वे दोनों बिल्कुल हैरान हो गए और बोले, क्या सच में। नंदिनी की माँ ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ शाम तक तो हो भी जाएंगे। नंदिनी और उदय ये बात सुनकर हैरान ही थे। तभी इप्सिता ने कहा, वाह आज का दिन तो कमाल का होने वाला है, लगता है आज हमें एक साथ ही कई सारी गुड न्यूज मिलने वाली हैं। वैसे भी अभी तो दिन सिर्फ शुरू हुआ है, अभी तो पूरा दिन बाकी है, देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है आज के दिन में।